नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट और मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है, जानते हैं इस बुलेटिन में। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सुर्खियों में हैं। अभिनेता तकरीबन 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्म का रिलीज होने से पहले ही बहिष्कार हो रहा है। अपनी फिल्म के रिलीज से कुछ दिन पहले आमिर खान ने मीडिया से बातचीत की और लाल सिंह चड्ढा से जुड़े हर एक सवाल का जवाब दिया। इस दौरान आमिर खान से बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड के बारे में भी पूछा गया। इस पर एक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने कहा है कि मैं दुखी हूं, साथ ही मुझे इस बात का भी दुख है कि कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि मैं कोई ऐसा शख्स हूं जिसे भारत पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरी फिल्म का बहिष्कार ना करें, कृपया मेरी फिल्म देखने ज़रूर जाएं। बता दें कि फिल्म के बायकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर उस समय ट्रेंड बन गया था जब किसी ने उनके एक पुराने वीडियो के कुछ हिस्से शेयर कर दिए। ये वीडियो 2015 के एक इंटरव्यू का था। इस वीडियो में आमिर खान कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारे देश का माहौल पिछले कुछ समय से बहुत ख़राब हो गया है। इतना ही नहीं, आमिर खान की पूर्व पत्नी और फिल्म निर्माता किरण राव ने कहा था कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए देश छोड़ने पर विचार कर रही हैं। कोरोना काल में दूरदर्शन ने रामायण और महाभारत जैसे चर्चित धारावाहिकों का पुनः प्रसारण किया था। लॉकडाउन के दौरान घर बैठे लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। इस सीरियल में काम करने वाले तमाम कलाकार भी दोबारा चर्चा में आए। रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोहिल इसी दौरान बीजेपी में भी शामिल हो गए। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 के दशक में जिस वक्त रामायण प्रसारित हो रहा था, उस दौरान अरुण गोविल कांग्रेस के लिए प्रचार करने उतरे थे। उन्हें तीखी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। चर्चित लेखक और पत्रकार विनय सीतापति ने पेंगुइन हिंदी से प्रकाशित अपनी किताब जुगलबंदी भाजपा मोदी युग से पहले में रामायण और महाभारत से जुड़े किस्सों का विस्तार से जिक्र किया है। वो लिखते हैं, इन सीरियल्स को बनाने और प्रसारित करने का फैसला हिंदुओं की पार्टी ने नहीं लिया था, बल्कि नेहरू की पार्टी ने लिया था। अयोध्या आंदोलन का समर्थन करने वाले राजीव गांधी ने शायद सोचा था कि ये हिंदू बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में करने का एक तरीका हो सकता है। सीतापति लिखते हैं कि राजीव गांधी ने इसे भुनाने के लिए राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोहिल से कांग्रेस का प्रचार भी करवाया था। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाम रही थी। रामायण और महाभारत से राजीव को कोई खास चुनावी लाभ नहीं हुआ था, उल्टा अरुण गोविल से एक वर्ग खासा नाराज हो गया था। लोग कहने लगे थे, राम चला है रावण के लिए वोट मांगने। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की पहली पैन इंडिया फिल्म लाइगर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म की रिलीज डेट पास आते ही मेकर्स ने काफी जोर शोर से लाइगर का प्रमोशन शुरू कर दिया है। हाल ही में विजय और अनन्या एक मॉल में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे, लेकिन वहां हालात इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए कि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, इस भीड़ में एक लड़की बेहोश हो गई। दरअसल विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे थे। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे को फैंस के साथ एक एक्टिविटी में हिस्सा लेना था। इस दौरान एक फीमेल फैन की हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। बताया जा रहा है कि उसकी ये हालत दम घुटने की वजह से हुई। उस महिला को जैसे तैसे उस भीड़ से निकाला गया और वहां भी महिला की हालत खराब ही रही। इसी बीच फैंस बैरिकेड को धक्का देकर स्टेज पर मौजूद विजय देवरकोंडा की तरफ जाने लगे। भीड़ को बेकाबू होता देख विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे को इवेंट बीच में ही रोककर वहां से निकाल दिया गया ताकि कुछ अनहोनी ना हो। पात्रा चौल घोटाले में फंसे शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने पहले उन्हें हिरासत में लिया था और बाद में गिरफ्तारी हुई। राउत की गिरफ्तारी पर मनोरंजन जगत के लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन ने जहां इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने भी चुटकी ली है। ट्विटर पर जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि जो संजय राउत की गिरफ्तारी की गई है, उन्हें लगता है कि ये ईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस पर जया बच्चन ने कहा, बिल्कुल, ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल किया जाना चाहिए। 11 लाख रुपए के लिए आप इस तरीके से किसी को परेशान कर रहे हैं। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि राउत की मां काफ़ी बुजुर्ग हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानती हूं। आगे रिपोर्टर ने कहा कि क्या आपको लगता है कि ईडी का ये बेजा इस्तेमाल कब तक चलेगा। इस पर जया ने बहुत ही तीखे स्वर में कहा, 2024 तक। जया बच्चन के अलावा एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी जी पूरी पार्टी के श्री कृष्ण हैं, संजय राउत क्या खूब कहा, सुदर्शन चक्र तो निकल गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है, अगले बुलेटिन तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।